ओम शांति। एक राज्य में कोई उत्सव था और वो उत्सव बहुत बड़ा उत्सव था। उसमें तरह तरह की चीजें थी और मुख्य आकर्षण एक नाटक था। और उस नाटक में एक राजकुमारी का पार्ट था, छोटी सी राजकुमारी, 5 वर्ष की। परंतु एन वक्त पर वो राजकुमारी, वो एक्टर एक्ट्रेस, छोटी लड़की जो प्ले करने वाली थी, बीमार पड़ गई। तो उसकी जगह लेने वाला कोई नहीं था। तो राजा को बहुत चिंता हुई कि क्या किया जाए। तो रानी ने एक बात कही कि मेरे मन में विचार आता है कि हमारा जो छोटा बेटा है 5 साल का, क्यों ना उसे ही राजकुमारी बनाकर उस नाटक में रख दिया जाए, किसे क्या पता चलेगा। तो ये बात तो बहुत अच्छी लगी राजा को। राजा ने कहा ठीक है। तो वो जो छोटा राजकुमार था 5 वर्ष का, उसको राजकुमारी के वस्त्र पहना दिए जाते हैं और उस नाटक में जो जो बोलना है, जो जो करना है, सब कुछ सिखा दिया जाता है। तो वो नाटक इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है, और सब लोग उस राजकुमारी अर्थात राजकुमार को, उसकी एक्टिंग को, उसकी कलाकारी को बहुत सराहते हैं, बहुत प्यार करते हैं उसको कि कितना अच्छा है इसने नाटक किया। तो जब नाटक पूरा हो जाता है, वो ड्रामा, तो राज महारानी को लगता है कि क्यों ना मैं अपने बेटे का इसी राजकुमारी के वेश में एक चित्र बनवाऊं। तो एक सबसे अच्छे चित्रकार को बुलाती है और अपने बेटे का, जो कि अभी राजकुमारी के वेश में है, उसका बहुत सुंदर चित्र बनाती है। ये उत्सव पूरा हो जाता है। वो जो राजकुमार है वो बड़ा होता है, 20-25 वर्ष का हो जाता है। और उसका राज्याभिषेक कुछ समय के बाद होने वाला है। और वो एक दिन ऐसे ही राजमहल में घूमते 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 एक बंद कमरे में पहुंचता है। दरवाजा खोल के देखता है तो यहाँ बहुत सारी चीजें थी पुरानी पुरानी, और उस पुरानी चीजों में एक चित्र दिखता है एक राजकुमारी का। और जैसे वो राजकुमारी का चित्र देखता है, उसे बहुत अच्छा लगता है वो चित्र। और फिर नीचे तारीख पड़ता है जिस तारीख को वो चित्र निकाला गया। और जैसे ही तारीख पड़ता है, उसको लगता है ये राजकुमारी अब मेरी उम्र की होगी, क्योंकि तारीख के अनुसार इसकी उम्र और मेरी उम्र एक ही है। और उसको उस चित्र की राजकुमारी से प्यार हो जाता है। और उसी को देखते रहता है, उसी को याद करता है, और फिर उसको ढूंढना आरंभ करता है। राज्य में कहीं नहीं मिलती, दूसरे राज्य में भी जा जा के चुप चुप के ढूंढता है, नहीं मिलती। उसी का ख्याल, उसी का चेहरा देखते रहता है, और धीरे धीरे मन से उदास रहने लगता है। फिर उसका, उसकी जो रुचि थी राज कारोबार, राजपाट, कम हो जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब केवल उसी राजकुमारी के ख्याल कि कहाँ वो मिलेगी, कहाँ वो मिलेगी। तो राज्य का मंत्री देखता है ये क्या हो गया राजकुमार को। वो पूछता है उसको क्या हुआ। वो कहता है कुछ नहीं, ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती है, बड़ी गुप्त बातें हैं ये। तो वो कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर भी मंत्री पूछता है बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहता है मुझे किसी से प्यार हो गया है। मंत्री कहता है किससे। वो कहता है एक राजकुमारी से। मंत्री पूछते है उसका नाम, नाम तो नहीं पता। किस राज्य की है, वो भी नहीं पता। कहाँ मिली, मिली नहीं। फिर प्यार कैसे हुआ। वो कहता है चलो और लेके जाता है और दिखाता है चित्र ये है। मंत्री कहता है पर ये तो बहुत छोटी है। वो कहता है छोटी नहीं, तारीख पढ़ो नीचे। जब उसका चित्र निकाला गया था तब वो ये तारीख को निकाला गया था, अब वो मेरी ही उम्र की है और मुझे इसी से प्यार हो गया और मुझे यही चाहिए। तो मंत्री तो बूढ़ा था और अचानक उसको याद आता है वो दृश्य, वो उत्सव जिसमें वो स्वयं था। और उसे पता चलता है ये तो राजकुमार का ही चित्र है। और वो उस राजकुमार से कहता है और सत्य बताता है कि तुम्हें जिससे प्यार हो गया है ये तुम ही हो। और जैसे ही उस राजकुमार को पता चलता है ये तो मैं ही हूं, उसका वो सारा मोह, उसका वो सारा लगाव, उसका वो इश्क मोहब्बत प्यार इन्फैचुएशन क्रश एक सेकंड में समाप्त हो जाता है। जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, अब तक जो उदासी थी, अब तक जो दुख था, अब तक जो गम था, अब तक जो मायूसी थी, एकदम से समाप्त हो जाती है जब ये पता चलता है तत्वमसि तुम वो हो, तुम ये नहीं तुम वो हो, तुम ये नहीं नच भाति भूत संगम, ये जो देह दिखाई दे रहा है ये तुम नहीं तुम वो चेतन आत्मा हो। जैसे ही आत्मा इस सत्य ज्ञान को प्राप्त करती है और उसका वो सारा भ्रम, उसका वो सारा मोह, उसका वो सारी देह की वासनाएं समाप्त होती है। और जब तक इस भ्रांति में जीती है कि मैं देह हूं तो दूसरे भी देह है, और जब तक मैं देह हूं तो दूसरा भी देह है, और दूसरा सुंदर है असुंदर है, और उसमें फंसती रहती है। जब तक सत्य का बोध ना हो तब तक ब्रह्म है। जब तक देह को ही सत्य मान रखा है तब तक ब्रह्म है। जब ये पता चल जाए कि मैं ये देह ही नहीं, निरंतर उस आत्मिक स्थिति का अभ्यास और सत्य स्वरूप का अभ्यास, नई ऊर्जा आएगी आत्मा में, शक्ति भरेगी आत्मा में। नहीं तो किसी ना किसी के प्यार में और किसी ना किसी के लगाव में और किसी ना किसी की आसक्ति में आत्मा भ्रमित रहती है, समझती है ये मेरा है ये मेरी है, ये मेरे अपने हैं ये मेरे पराए हैं, ये मेरे नहीं है ये मेरे हैं, कौन मेरा और कौन किसका। ब्रह्म। स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए थे तो लोगों ने कहा उनको, हैव यू कम टू हिप्नोटाइज अस, क्या तुम हमको सम्मोहित करने आए हो? उन्होंने कहा, यू आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज दैट यू आर बॉडी, आई हैव कम टू डी हिप्नोटाइज यू। तुम पहले से ही सम्मोहन में हो, मैं तो तुम्हारा सम्मोहन तोड़ने आया हूं। तुम ये देह नहीं, तुम कुछ और हो। ये जो शरीर का हिप्नोटिज्म है, ये जो शरीर का सम्मोहन है, ये शरीर के संबंधों का सम्मोहन है, फंसा के रखता है आत्मा को। मजबूर करता है ये सोचने में कि कोई मेरा साथी है, कोई मेरा अपना है। जैसे कोई एक शिकारी शिकार करते करते जंगल में खो गया, 3 दिन 3 रात तक भटकता रहा, कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई परिंदा नहीं, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कुछ नहीं, अकेला भटक रहा है किसी जंगल में, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, चिल्ला रहा है पुकार रहा है, कोई नहीं दिखाई देता। और अचानक एक दिन किसी पेड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है, वो भागता है उसकी ओर। वो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी एक शिकारी है, वो भी भटक रहा है 2 3 दिनों से, उसको भी कोई नहीं मिल रहा है, उसको भी बड़ी खुशी होती है इससे मिलकर। अब तक ये भटक रहा था, अब उसको दूसरा मिल गया, अब दोनों मिल गए, पर अब दोनों साथ साथ भटक रहे हैं। पहले एक भिखारी था, उसको दूसरा भिखारी मिला, अब दोनों भिखारी साथ साथ भटक रहे। इसी को समाज विवाह कहता है। न वो सम्राट न ये सम्राट, ना वो तृप्ति कर सकता है, ना वो तृप्ति उसी से तृप्ति हो सकती है। हमें कोई देहधारी तृप्त नहीं कर सकता, पर सोचता है शायद ये मुझे सुख दे देगी या वो मुझे सुख दे देगा। क्या सुख उनके पास है जो देंगे? वो खुद ही खाली है। पहले अकेले भीख मांगते थे, अभी साथ साथ भीख मांगते रहते हैं जीवन भर। कुमार जीवन वरदानी जीवन है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, कुमारों से मुलाकात, बिजी रहने को कहा, बैलेंस रखने को कहा, भाग्य को याद रखने को कहा, तीन बातें। तो आज का हमारा विषय है शुभस्य शीघ्रम, जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल, अब समय है करने का। तो कौन सी वो चीजें हैं जो इस कुमार जीवन में हमें फटाफट कर लेनी है? नहीं तो पश्चाताप, नहीं तो दुख, नहीं तो दर्द, आत्मग्लानि। एक गृहस्थ भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, बहुत प्रार्थना करता है और भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं मन्नत मांगो। वो कहता है मैं पहले कुमार था, फिर शादी कर ली, फिर गृहस्थ बना, अब बहुत दुखी हूं, मुझे वापस कुमार बना दो। भगवान कहते हैं मैंने मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। तो कुमार जीवन अर्थात जन्नत, कुमार जीवन अर्थात निर्बंधन, कुमार जीवन अर्थात किसी पर कोई निर्भरता नहीं, कोई अधीनता नहीं, इंडिपेंडेंट, जो चाहे वो कर सकते। यदि बंधने का संकल्प है तो दुख की शुरुआत है। इसके लिए इस जीवन में वो संकल्प नहीं करना। संसार के वो मार्ग छोड़ चुके हैं। तो ऐसी सात चीजें हैं जो हमको आज ही करनी है, अभी ही करनी है, इसी जीवन में करनी है, इसमें देरी नहीं करनी है। तो ऐसी सात बातें हम देखेंगे जो कि फटाफट करनी है। सबसे पहली, विकारों पर विजय, और उसमें भी सबसे प्रमुख विकार काम विकार। जिसने काम को जीता, बाकी सब अपने आप जीत जाएंगे। कुमार जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो है ब्रह्मचर्य। कोई एक माली जिसके पास बहुत बड़ा बगीचा है और सारे फूल एकत्र करता है और महीना भर मेहनत करता है, अलग अलग ढंग के फूल, अलग अलग खुशबू वाले फूल, सारे फूल एक मास के बाद एकत्र करता है, उसका रस निकालता है और नाली में बहा देता है, इसे क्या कहेंगे? बुद्धिमान माली या मूर्ख? देह में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो इसको बहा रहे हैं, वो मूर्ख है या बुद्धिमान? वो जो ऊर्जा यदि नीचे बहे तो शरीर को जन्म देगी, वो ऊर्जा यदि ऊपर बहे तो ओजस बन जाएगी। और जब वो ऊर्जा, जब वो वाइटल फोर्स चेतना में बहेगा तो असीम शक्ति का अनुभव होगा, वीर्यवान व्यक्ति बनेगा, एक शक्तिशाली स्मृति, मेमोरी पावर, वाणी में तेज होगा। और यदि उस मूर्ख माली की तरह नीचे यदि बहा दी जाए तो साथ में आत्मग्लानि का भाव होगा एंड सेकंड एडिक्शन। जो क्रिया एक बार की जाए उसे दोहराने की इच्छा एडिक्टिव है, लत है। बाकी सारे व्यसन दिखाई देते हैं, ये व्यसन गुप्त है। दारू पीना दिखाई देता है, सिगरेट बीड़ी शराब दिखाई देता है। स्वयं स्वयं की उन इंद्रियों को उत्तेजित करना और ऊर्जा शक्ति का नाश करना गुप्त है और सबसे घातक है। इसलिए इस जीवन में संपूर्ण प्यूरिटी की जो प्रतिज्ञा है उसको फिर रिवाइज करना है। प्यूरिटी के विषय में बाबा ने जो कुछ कहा है उसको फिर पढ़ना है। बाकी सारी बातें हम सुनते रहते हैं परंतु ब्रह्मचर्य की चर्चा बहुत कम है, और सबसे ज्यादा चर्चा उसी की होनी चाहिए। बाप समान बनना है, ये सारी चर्चाएं बहुत है। फरिश्ता बनना है, ये सारी चर्चाएं बहुत है। परंतु जहां पर पतन हो रहा है वो काम विकार है, और जब तक काम वासना को समझा ना जाए उसका अतिक्रमण भी नहीं किया जा सकता। जितना उसको दबाओगे उतनी वो भपकेगी, भड़केगी और मार्ग ढूंढेगी कब वो बाहर निकले, कब वो आए। और संसार में जितने पागलखाने और जितने विक्षिप्त लोग हैं, दे आर बिकॉज ऑफ सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर। जब तक इसको समझा ना जाए और इसका अतिक्रमण ना कर दे आत्मा, तब तक वास्तविक ब्रह्मचर्य फलित नहीं होगा। जो ब्रह्मचर्य में हम स्थित है शायद कहीं ना कहीं दमन है, भय है, या फिर प्रासंगिक है थोड़े समय का। कुछ समय के बाद टूटा, मास में एक बार टूटा, फिर दो बार, फिर तीन बार, और गुप्त है। परंतु जब वो टूटेगा आज साथ में आत्मग्लानी लाएगा। चोरी की उसकी आत्मग्लानी छोटी है, ब्रह्मचर्य छोटा सा टूटा, आत्मग्लानी बड़ी है, और वो आत्मग्लानी फिर रोकेगी और फिर आगे नहीं बढ़ने देगी। इसके लिए संकल्पों को समझना है, दबाना नहीं उनको। जो उठ रहा है उठने दो, साक्षी होकर देखो, भस्म हो जाएंगे। सारा वायुमंडल विकारी है, मीडिया, बुक्स, मैगजीन्स, फिल्म, मूवीज, उसमें शरीर और शरीर की वासना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो देह का प्रदर्शन है और देह की नग्नता है, और जिसने संसार को पागल कर रखा है, जब तक साधना नहीं और तपस्या नहीं और इसको समझा ना जाए, इससे चेतना बाहर भी नहीं निकल सकती। ऐसी गिरफ्त में गिरफ्तार है कि चाहते हुए भी निकल नहीं पाती। इसके लिए भगवान नुवाच, भगवान केवल एक ही काम करने आया, पतित से पावन। पतित क्रोधी को नहीं कहा जाता, पतित लोभी को नहीं कहा जाता, पतित अहंकारी को नहीं कहा जाता, पतित उसको कहा जाता है जो काम कटारी और जो विष पीने वाला है। और आत्मा ने जन्म जन्म इस विष को पिया है, आदत सी है। कौन उसको सिखाता है? कितना आश्चर्य है, कोई नहीं सिखाता। हिंसा कौन सिखाता है आत्मा को? बचपन से कोई है? माँ बाप सिखाते तुम्हें हिंसा नहीं करनी चाहिए, फिर भी अपने आप सीखता है। कौन काम विकार सिखाता है? अपने आप सीखता है। जन्म जन्म के संस्कार है। जो जन्मांध है वो भी काम से मुक्त नहीं है। जिसने कभी किसी स्त्री को नहीं देखा, इसके लिए युद्ध का नियम है अपने शत्रु को समझो, युद्ध का नियम है अपने शत्रु को कम नहीं समझना, युद्ध का नियम है कि असावधान नहीं हो जाना, क्योंकि जब असावधान होगा तभी आक्रमण होगा। मधुबन में है तो कुछ नहीं होगा, भट्टी चल रही है तो कुछ नहीं होगा, ऑफिस में है बिजी है तो कुछ नहीं होगा, जब फ्री हो गए वो 10 मिनट ही माया अटैक करेगी। और सबसे बड़ा प्रलोभन यहां पर है, कोई भी चीज बिना पर्पस के इंटरनेट पर ढूंढनी नहीं है। डू नॉट सर्फ विदाउट पर्पस। कुछ ढूंढना है तो ही ऑनलाइन जाना है, विदाउट पर्पस गए तो कहां से कहां पहुंच जाते हैं, चालू कहां से किया और एंड कहां हुआ। डू नॉट गो टू यूट्यूब विदाउट पर्पस। एक लक्ष्य है, कुछ सुनना है, उतना सुन लिया और आगे, नहीं तो यहां से पतन चालू होगा। और वो सारी बड़ी बड़ी बातें, बाप समान बनना है, कर्मेंद्रिय चीत बनना है, कर्मातीत बनना है, अब घर जाना है, सब एक तरफ। 20-20, 30-30 साल ज्ञान में चलने वाले कुमार छोड़कर चले गए, कैसे? आश्चर्य, कहां गई उनकी धारणाएं? इसके लिए दो किताब, तीन किताबों के आपको नाम दे रहे, उसको आप नोट करना है। सबसे पहला ब्रह्मचर्य स्वामी शिवानंद, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी ऋषिकेश। ये वही स्वामी शिवानंद है जिसको ब्रह्मा कुमारियां मिली थी और जिन्होंने सबसे पहली बार 19 बहुत पहले जापान की ट्रिप बनाई थी यज्ञ में। दूसरी किताब जगदीश भाई जी की लिखी हुई ब्रह्मचर्य। तीसरी किताब महाराष्ट्र के एक संत है स्वामी शिवानंद, वो भी शिवानंद है वरुड़ के, उसकी लिखी हुई। ये तीन किताबें हैं ब्रह्मचर्य के ऊपर। प्यूरिटी के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, प्यूरिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, प्यूरिटी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। प्यूरिटी की चर्चा है मुरलियों में बहुत है, ब्रह्मचर्य की चर्चा कम है, और प्यूरिटी का आधार ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य को धारण करने के लिए उसको समझना होगा, ये संसार इतना पागल क्यों है विकारों के पीछे, और इस एक विकार के पीछे एक भी मन नहीं है जो मुक्त है। देह को देखने में और देह को स्पर्श करने में रस है, क्या है ये, और कैसे छूटे इससे, और कैसे बाहर निकल जाए इससे। और इस यज्ञ से आज तक जो भी बाहर गया है एक ही विकार के कारण गया है। ऊपर से कुछ कुछ दिखाई दिया, झगड़ा हो गया, इसका ठीक नहीं, उसका ठीक नहीं, डिपार्टमेंट ठीक नहीं, अंदर से कारण एक ही था, विकार, आसक्ति। विदेश के किसी एक बहन ने अनुभव बताया था कुछ दिन पहले, हॉस्पिटल में एक कुमार था विदेश में, बहुत अनन्य सेवा करता था, ऐसी ऐसी सेवाओं की उसने शुरुआत की जो किसी ने नहीं की थी, बहुत पुराना, 10-20-30-40 साल पुराना, बहुत सारी सेवाएं की, नई नई सेवाएं की, इन्वेंशंस की, इन्वेंटिव सर्विसेज की। और अचानक एक दिन सेंटर पर तो आता है परंतु उदास दिखता है, मुरली सुनता है परंतु उदास दिखता है, अब वो उमंग उत्साह नहीं रहा जो कि पहले था सेवा करते समय। पूछा उससे क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं, और उसने कुछ अपने कारण बताए, प्रोबेबली बाबा डजंट वांट मी टू वर्क एनी मोर। बाबा को बीच में लाते हैं ना ब्राह्मण, बड़े रॉयल उत्तर देते हैं अगर कुछ भी कहना रहा तो, शायद बाबा चाहता है कि मैं अभी और सेवा ना करूं। फिर भी उसको पूछा क्या, नहीं बताया। फिर एक बहन को थोड़ा काउंसिलिंग के लिए उसके साथ बिठाया गया, तब उसने बताया कि मुझे एक नई आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूं, यूट्यूब दिन भर सेवा करता हूँ, रात में थकान होती है, सोचता हूँ कुछ देखूँ, और देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है पता नहीं चलता है, 1 बज जाता है, 2 बज जाता है, सुबह अमृत वेला उठता तो हूँ क्योंकि आदत पुरानी है उठने की, पर अनुभव कुछ नहीं। सेंटर तो जाता हूँ, मुरली सुनता हूँ, परंतु केवल सुनता हूँ, क्या हो रहा है पता नहीं। सेवाओं में रुचि कम हो गई, ज्ञान योग में रुचि कम हो गई, गुप्त पतन। इसके लिए अपनी डिजिटल हैबिट्स को चेक करना है। डू नॉट गो फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग विदाउट पर्पस, डू नॉट गो फॉर ऑनलाइन सर्फिंग विदाउट पर्पस। लक्ष्य है तो ही जाओ, कुछ ढूंढना है ढूंढ के वापस आ जाओ, बस फंस नहीं जाना उसमें, नहीं तो पतन होगा। तो हमें सबसे पहला काम जो करना है वो है विकारों पर विजय, और सबसे बड़ा ये विकार है, इसको छोटा नहीं समझना, कम नहीं समझना। कम समझा और सोचा हम तो बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल अमृत वेला है, बहुत अच्छा हमारा मुरली चिंतन है, और दिनचर्या भी बहुत अच्छी है, हम बहुत बिजी भी है। शत्रु को कम समझा और आ गया। निरंतर चौकन्ना अलर्ट। जब अर्जुन का युद्ध होने वाला होता है कर्ण से, अर्जुन जाग रहा है, रात भर अपने तीर तेज कर रहा है, वो नकुल पूछता है आप क्या कर रहे हो, वो कहता है कल मेरा कर्ण के साथ निर्णायक युद्ध है। ऐसा नहीं कि इसके पहले कर्ण के साथ युद्ध नहीं हुए, उसके पहले भी हुए थे, द्रौपदी स्वयंवर में भी हुआ था, विराट के युद्ध में भी युद्ध हुआ था, परंतु कल का जो युद्ध है वो निर्णायक युद्ध है, और जब युद्ध की घड़ी और निर्णायक युद्ध की घड़ी है तो योद्धा निरंतर जागृत रहे, थोड़ा सा भय भी होना चाहिए। और यहां तो निरंतर हमारा युद्ध है विकारों के साथ, और ये सारा वातावरण संसार का विकारों से भरा पड़ा है, चित्र चित्र में विकार है, पोस्टर पोस्टर में विकार है, ऐसे वायुमंडल में खुद को सुरक्षित रखना, कैसी धारणा, कैसा चिंतन, कैसा अध्ययन, कैसी समझ चाहिए, जो ये देख ले इस देह के आर पार इसमें क्या है, हड्डी मूत्र मल मांस, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, बकेट स्टूल एंड यूरिन की है ये, संसार की सारी गंदगी इस देह में समाई है, इस चमड़े को उखाड़ कर फेंको, अंदर क्या है, कहाँ है सौंदर्य, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, आफत या आफताब, एक पागलखाने में इंस्पेक्टर आते हैं इंस्पेक्शन करने, तो देखते एक पागल किसी स्त्री का फोटो लगा के अपनी छाती से चिल्ला रहा है, उसके नाम ले रहा है, उसका नाम ले रहा है, बहुत परेशान बहुत दुखी। वो पूछता है ये कौन है, वो कहता है इसको इससे प्यार था, शादी करनी थी नहीं मिल पाई, इसके लिए दुखी है। आगे बढ़ता है दूसरा कमरा, उसमें एक खूंखार पागल है, वो पटक रहा है, सिर पटक रहा है, नाखून से नोच रहा है दीवारों को, उसके हाथ में भी एक तस्वीर है। इंस्पेक्टर पूछता है ये कौन है, वो कहता है ये वो है जिसको वो मिल गई। और आगे बढ़ता है तो वहां एक स्त्री है, वो कहता है ये कौन है, ये कहता है ये वही है। जिसको मिली जिसको नहीं मिली वो तो बहुत दुखी है, पर जिसको मिल गई वो और ज्यादा दुखी है। तो जो भी मिले उसको वही समझना, इससे पहले कि नए संबंध बनाए और सोचूं एक SMS भेजूं और एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं और उसको दोस्त बना लूं। समझना, ये वही है जिसकी तस्वीर उस पहले के हाथ में थी और जिसकी तस्वीर उस दूसरे के हाथ में है। क्योंकि टेम्पटेशन बहुत है दोस्ती करने का। कुमार जीवन अर्थात बेदाग, जो कहीं पर फंसा नहीं, कहीं पर अटका नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, केवल विश्व कल्याण अर्थ काम कर रहे हैं। किसी में फंसे तो गए, कहां से कहां मार्ग खुलेगा पता नहीं। और फिर हम कहेंगे ये स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स है, पर ऑल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप्स मोर ऑफन देन नॉट इन द लॉन्ग रन टर्न इनटू सेक्सुअल फ्रेंडशिप्स। इसके लिए खबरदार। तो पहला काम हमको करना है विजय। किस पर विजय? विकारों पर विजय। उसमें भी किस पे विजय? काम पर विजय। उसको समझना है, उसका अध्ययन करना है। जो किताबें बताई जगदीश भाई जी की किताब से चालू कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। समझो वो क्या है, समझो संतों ने क्या कहा है, बाबा क्या कहता है। ये कोई नई चीज नहीं है, द्वापर से सिखाते आ रहे हैं लोग, पर कोई छूट नहीं पाया उससे। कितना शक्तिशाली होगा, दबाने से नहीं हुआ, दबाने से पागल हो गए लोग, और जिसने भोगा वो आदि हो गए उसके। दो मार्ग है, एक है दबाओ विक्षिप्तता, दूसरा है भोगो। सोचते भोग लो मुक्त हो जाएंगे, पर नहीं हो पाए। जितना भोगते गए भोगते गए, मरते समय भी वंस मोर की कामना से ही मरा आदमी। तीसरा मार्ग है जो भगवान ने सिखाया, प्रेममयी ज्ञानमयी समझ, अंडरस्टैंडिंग। समझ लो और मुक्त हो जाओ। जब पता चल गया ये विष है तो बस वहीं छोड़ देंगे उसको, फिर उसका कोई संकल्प नहीं, उसकी कोई प्रतिज्ञा भी नहीं, अपने आप छूट जाएगा वो, क्योंकि वो विष है, पॉइजन है। दूसरी विजय, दूसरा काम जो करना है वो है इंद्रियों पर विजय, सारी इंद्रियों पर विजय। ये काम जितना जल्दी हो सके हमको करना है। पांच इंद्रियां है, रूप रस स्पर्श शब्द गंध। रूप आंखें, रस जबान, स्पर्श हाथ, शब्द कान, गंध नाक। रूप रस स्पर्श शब्द गंध, ये पांच। आज सुबह की जो अव्यक्त वाणी है अधिकार पर है, तुम्हें चार अधिकार प्राप्त है। पहला माननीय परमात्मा बच्चा बन गए, दूसरा ज्ञान, तीसरा शक्ति और चौथा कर्मेंद्रिय जीत। चार बातें बोली। तो इंद्रियों को जीतना यह एक साधना है, और पांच इंद्रियों में से आंखें और टेस्ट सबसे ज्यादा धोखा देती है। और जहां उत्तेजना है इंद्रियों में, वहां ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, ना प्यूरिटी ना ज्ञान योग। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय जिसे जीतना है, वैसे तो बाबा आंखें कहते हैं, पर आंखों से भी ज्यादा धोखा देने वाली जिह्वा है, रसेंद्रिय। क्योंकि रसेंद्रियों का कनेक्शन जनेंद्रियों से है। तो दूसरी जो विजय पानी है वो है इंद्रियों पर। आंखों को क्या देखना है क्या नहीं देखना है, कान क्या सुनना है, कौन सा म्यूजिक सुन रहे हैं, कौन से गीत गा रहे, क्या हम खा रहे, किसको स्पर्श करने की इच्छा है। संसार में जितने स्पर्श से उत्पन्न सुख है सभी दुखदाई है। टच बॉर्न हैप्पीनेस इज कंडीसिव टू पेन। जो स्पर्श से उत्पन्न सुख है वो दुख में रूपांतरित हो जाएगा। इसके लिए मन में सूक्ष्म वैराग चाहिए, और इंद्रिया ऐसी है कि जो उसको आदत डालो वो आदत उसको पड़ जाएगी। कुछ भी आदत उसको डाली जा सकती है। जो देखने की आदत डालेंगे वही देखने अच्छा लगेगा उसको। विकारों को देखने की आदत डालो तो विकारों को देखे बिना बेचैन। हमारे ऊपर है कौन सी आदत हम डाल रहे हैं, क्या हम सुन रहे हैं, क्या हम स्पर्श कर रहे हैं, क्या हम खा रहे हैं। जबान जो उसको खिलाओ वो उसको पसंद आता है। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात स्वाद से परे अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। उधर था शोक वाटिका संसार में, सतयुग में अशोक वाटिका, और संगम पर छोक वाटिका। हर चीज को टेस्टी बना बना कर जिह्वा का रस ब्रह्मचर्य की साधना करने नहीं देगा। जितेंद्रिय कर्मेंद्रिय चीत इंद्रिय चीत। योगी की सभी कर्मेंद्रिय वश में हो, शांत हो, उत्तेजना ना हो उसमें। और जहां रसेंद्रिय में उत्तेजना है वहां जनेंद्रिय में उत्तेजनाएं होगी, और उत्तेजनाओं का परिणाम वीर्य नाश। आत्मग्लानि के लिए इंद्रियों को जीतने का अभ्यास करना है। विधि है इंद्रियों से परे रहना, जैसे अभी योग किया। हमें नहीं लगता कि किसी के मन में इंद्रियों के वश होने का कोई संकल्प आया होगा। अपने आप चेतना ऊपर उठ गई। यदि इसी अवस्था में लंबा समय रहा जाए तो वो इंद्रियों के रस फीके पड़ जाएंगे, उसकी जो ग्रिप है ऑक्टोपस ग्रिप ढीली हो जाएगी। तो दूसरा, इंद्रियों पर विजय अभी पानी है, आज ही पानी है। ब्रह्मचर्य की साधना में उपवास का बड़ा महत्व है। तीसरा, व्यर्थ और निगेटिव पर विजय। वेस्ट और निगेटिव, हर चीज निगेटिव, हर चीज निगेटिव। यहां भी निगेटिव, मधुबन जाते हैं तो वहां निगेटिव, सेंटर जाते हैं वहां निगेटिव, निगेटिव ही निगेटिव। घर जाते हैं ऑफिस में निगेटिविटी, सारा निगेटिव निगेटिव निगेटिव। क्या कोई निगेटिव माइंड से योग कर सकता है? किसी एक आत्मा के प्रति भी यदि हमारे मन में घृणा है तो हम योगी नहीं बन सकते, संपूर्ण नहीं बन सकते। भगवान उवाच। तो जो कार्य अभी के अभी करना है और जो कार्य तुरंत करना है, एक एक दिन का लक्ष्य रखना है कि आज सारे दिन भर इस सारी नेगेटिविटी से मुझे अपने आप को बचाना है। वातावरण में नेगेटिविटी है, ऑफिस में नेगेटिविटी है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रहा है सब, परंतु हमें इसमें जाना ही नहीं है। पांडवों को कितना सहन करना पड़ा महाभारत में, शुरुआत से लेकर। और गायन क्या है? विजयी पांडव। और विजयी पांडव के पीछे सहन कितना करना है, कितनी चाले शकुनी और वो दुर्योधन, क्या कुछ नहीं किया, सब सहन करते गए, सहन करते गए। और जो धर्म के मार्ग पर चलेगा और अध्यात्म के मार्ग पर चलेगा उसको तो सहन ही करना पड़ेगा। यदि प्रतिकार करोगे, संघर्ष करोगे तो निगेटिविटी आएगी। हमारे साथ ऐसा क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों नहीं, ये पक्षपात क्यों, ये पार्शियलिटी क्यों, सब कुछ हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, उनके साथ क्यों नहीं, क्यों रह जाता, चाहे लौकिक या अलौकिक कहीं पर भी। हमको इस सब से अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये हमारा मार्ग नहीं है, भगवान ने ये नहीं सिखाया, उसके लिए सहन करना पड़ेगा, पर उस सहन करने में भी शक्ति आएगी। तो तीसरी विजय है जो आज के आज ही करनी है, व्यर्थ। और दूसरा है व्यर्थ, व्यर्थ, व्यर्थ इसलिए है कि समर्थ की कमी है, समर्थ की कमी इसलिए है कि मुरली का चिंतन कम है, मुरली का अध्ययन कम है। सभी कुमार हर दिन कम से कम एक अव्यक्त वाणी का स्टडी की स्टडी और दूसरा एक क्लास जरूर सुनना है, कोई भी यज्ञ के जो भी महारथी है, दादिया है, यज्ञ के इतिहास की क्लासेस है, क्लास सुनना, उसके नोट्स निकालना, क्लास सुनना, पॉज नोट्स, पॉज नोट्स, पॉज नोट्स, 10 पॉइंट निकाल लिए क्लास बाजू में, अब ये 10 पॉइंट रिवाइज करो दिन भर। जब तक ज्ञान का चिंतन नहीं होगा नहीं तो व्यर्थ आएगा, वेस्ट आएगा। समर्थ संकल्पों के लिए समर्थ चिंतन चाहिए, पावरफुल चिंतन चाहिए, उसके लिए हमको ज्ञान के रत्न निकालने पड़ेंगे मुरली से। तो ये तीसरी विजय है। चौथी विजय प्रकृति पर विजय, इन तत्वों पर विजय। बाबा ने कहा तुम प्रकृति जीत हो, चैलेंज करने वाले हो, तो अभी से प्रकृति पर प्रयोग करने हैं। प्रयोग अर्थात सकाश, 24 घंटे में 2 बार 5 तत्वों को सकाश देनी है। मुझसे पवित्रता की किरणें संपूर्ण वायुमंडल में फैल रही है, इस शरीर में भी फैल रही है, शरीर भी तत्वों का बना हुआ है और वायुमंडल में भी। तो तत्वों की 2 बार सेवा करनी है, तो धीरे धीरे हम प्रकृति जीत बनेंगे। तो ये भी एक विजय है, ये भी एक कार्य है जो आज के आज ही करना है, इसमें लेट नहीं होना चाहिए, अभी से आदत डालनी है इसकी। जैसे वो आदत है ये भी आदत है, जैसे विकारों की आदत है ये निर्विकारी आदत है, न्यू हैबिट्स ऑफ ज्ञान, जो कि अपने आप होती रहेगी। फिर चिंतन की आदत अपने आप होती रहेगी, सकाश देने की आदत अपने आप होती रहेगी, पर आदत डालनी पड़ेगी। एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, बार बार करो, रिपीटेशन, रिपीट करते रहो वही आदत को, वही कार्य को, तो आदत बन जाएगी। तो कितने हुए, सबसे पहला बताया विकारों पर विजय, दूसरा बताया इंद्रियों पर विजय, तीसरा बताया व्यर्थ और निगेटिव पर विजय, चौथा बताया प्रकृति पर विजय, पांचवा आत्माओं के हृदय पर विजय, अर्थात आत्माओं के दिलों को जीतना है। और वो बुद्धि से नहीं जीते जाएंगे, प्रेम से जीता जाएगा, अर्थात उनकी सेवाएं करनी, अर्थात उनको संतुष्ट करना, अर्थात सबसे बड़ी संतुष्टता है आत्माओं में जो प्यूरिटी है वो जागृत करना, योगियों को निर्माण करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। फिर से प्रभु प्रेम जागृत करना आत्माओं में, जो विकारों में भटक गए हैं उनको फिर से राह पर लाना, ये सबसे बड़ी सेवा है। हृदय सिंहासन पर विराजमान होना, उसके लिए अपने अहंकार को नीचे करना होगा और विनम्रता से, नम्रता से उनकी सेवा करना पड़ेगा। आज की जो मुरली अव्यक्त वाणी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर से बाबा मिल रहे हैं, माधव सिंह सोलंकी, 1984, लास्ट लाइन, ट्रस्टीशिप और निर्माणता, यही सबसे बड़ी राजनीति है, यही नीति विश्व, यही राजनीति से श्रेष्ठ नीति जन्म लेगी और यही राजनीति भारत से विश्व कॉपी करेगा, आज का है बाबा। तो वो निर्माणता का भाव, वो ट्रस्टीशिप का भाव, और सबकी सेवा करनी है और सबसे सीखना है, ये भाव तो उनके हृदय पर राज करेंगे। यदि हमारा अहंकार खड़ा है तो हम आत्माओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। सभी को देना है, सभी पर रहम, सभी पर कृपा दृष्टि और सभी से सीखने का भाव, और ये समझना सभी हमसे महान है, सभी महान है, जैसे अभी हमने जो योग का प्रयोग किया उसमें केवल मैं ही हनुमान नहीं हूं, ये भी हनुमान है। मैं ही महान नहीं हूं, ये भी महान है। हम दोनों ही महान हैं। यदि ये भाव नहीं रहा तो कमी कमजोरियां दिखने लगती है। एक अव्यक्त वाणी है जिसमें बाबा ने कहा था कि तुम बच्चों को कभी भी किसी के वर्तमान संस्कार देखने ही नहीं, तुम्हें केवल अनादि या आदि संस्कार देखने हैं बस। यहां अभी कैसी भी आत्मा हो, कुछ दिन पहले वरदान था, चाहे रावण, जरासंध, कंस, कोई भी हो, सब महान है, सब श्रेष्ठ है और मुझे सबसे सीखना है। यदि कोई गलतियों पे गलती कर रहा है तो यह सीखना है कि मुझे ऐसी गलती नहीं करनी है। कोई कटु बोल रहा है तो यह सीखना है उससे कि मुझे इसके जैसा बोलना नहीं है। कोई षड्यंत्र कर रहा है, यह सीखना है कि मुझे ऐसा षड्यंत्र नहीं करना है। कोई विकारों में जा रहा है हमारे सामने, मुझे ये नहीं करना है, ये उससे सीखना है। तो आत्माओं के हृदय को जीतना है, ये भी एक जीत है। उसके बाद संस्कार छठवा है, अपने ही विकारी संस्कारों को जीतना है। विकारी संस्कार या विकर्म जो हो गए हैं इस जीवन में, जो भी पाप हो गए हैं ज्ञानी बनने के बाद, ब्रह्मा कुमार बनने के बाद किए हुए पाप, इसको भस्म करने में ज्यादा समय लगेगा। जो द्वापर से किए हुए पाप है उसको भस्म करने में लगेगा उससे। ज्ञानी के द्वारा किए हुए पाप बहुत बड़े दंड का भागी बनाता है। इसके लिए यदि कुछ हुआ भी है, पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। द्रौपदी हंसती है दुर्योधन पर, उसके बाद युधिष्ठिर द्रौपदी से मिलता है, कहता है क्या जब वो गिरा तो तुमने ऐसा कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा? द्रौपदी कहती हाँ, मेरे से गलती हो गई। गलती तीन कारण, एक तो वो अनुज है, छोटा है, दूसरा वो हमारा अतिथि था, और तीसरा ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र का भी तुमने अपमान किया। वो कहती है मुझे दंड दो। युधिष्ठिर कहता है कुछ कुछ अपराध दंड नहीं, प्रायश्चित करना होता है। दंड से कुछ नहीं होगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। इस ब्राह्मण जीवन में भी अगर अपराध हुए हैं, पाप हुए हैं, तो प्रायश्चित करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रायश्चित है तपस्या, सबसे बड़ा प्रायश्चित है योग, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है ज्ञान चिंतन, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है दूसरी आत्माओं को जगाना। यही प्रायश्चित। प्रायश्चित वो नहीं है कि खाना छोड़ देंगे। आज अमृत वेला मिस हो गया, लोग कहते हैं हम नाश्ता नहीं करेंगे, और नाश्ता नहीं करते, और दोपहर के भोजन पे ऐसे टूट पड़ते हैं कि बात मत पूछो फिर। ये कोई प्रायश्चित है? ये दमन है, सप्रेस्ड, सप्रेशन। रात भर उपवास, दिन भर उपवास करो, रात में ब्रह्मा भोजन दिखाई देता है, ये कैसा प्रायश्चित है? ऐसा प्रायश्चित नहीं चाहिए। विकार का संकल्प आया, लोग संसार में राम 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 जपना चालू कर देते हैं, हटाओ 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 राम राम, ये कोई प्रायश्चित है? ये कोई विधि है? विधि ये नहीं है। विधि है देख लेना व्यर्थ को, विकारों को जीतने की विधि है व्यर्थ को देख लेना। विकारों को जीतने की विधि है कि वो व्यर्थ है, वेस्ट है, यूजलेस है, मेरे कुछ काम का नहीं है, ये समझ लेना, अपने आप गिर जाएगा वो। संघर्ष नहीं करते रहना पड़ेगा उससे। तो अपने संस्कारों की स्टडी करनी है, और जब विकारों के वश हो जाए उस समय अपने मनोस्थिति को लिख लेना, कहीं पर, मोबाइल पर लिखो या तो डायरी पर लिख दो, ये संकल्प आ रहे हैं। और फिर दूसरे दिन उनको स्टडी करना कि ऐसा भी हुआ था, ये मैं ही हूं। हंसी आएगी, अरे तुम इतने महान और ये हुआ था? क्योंकि जब होता है और बाद में हम भूल जाते हैं उसको, पर वो फिर होता है। फिर गति बहुत सूक्ष्म है। किस दरवाजे से आ जाए पता नहीं। जैसे ये डायमंड हॉल है, उसमें कितना 42 दरवाजे, सब बंद कर दिए, एक छोड़ दिया खुला। बाहर तूफान आ रहा है, अंदर तूफान आएगा क्या? सारे दरवाजे बंद है, एक ही खुला छोड़ दिया, उस एक खुले दरवाजे से ही तूफान आएगा। इसके लिए चेकिंग करनी है सूक्ष्म, आइडेंटिफाई ट्रिगर्स। क्या ट्रिगर है? पोस्टर, पिक्चर, वीडियो, क्लिप, मूवी, ट्रेलर, बुक, मैगजीन, फ्रेंडशिप, कोई संबंध, कोई बात, कोई मैसेज, कोई जोक, जो भी ट्रिगर होगा, उत्तेजक होगा, उसको हटा दो, क्योंकि ये जब आएगा तब आत्मा गिरेगी, अन्यथा नहीं गिरती है। कुछ आएगा तभी गिरती है। दारू पीने वाला व्यक्ति दिन भर सोचता है दारू खराब है, दारू खराब है, मैं नहीं पीऊंगा, मेरी पत्नी बीवी सब सफर कर रहे हैं, दिन भर संकल्प करता है, जैसे ही शाम आती है अपने आप कदम मधुशाला की ओर अपने आप चले जाते हैं, अपने आप, ऐसी आदत पक्की है, तब कुछ भी नहीं कर सकता, दिन भर का तर्क सब फेल हो जाता है। विकारों में भी वो पावर है, सारी श्रीमत और सारा चिंतन और सारी भट्टिया और सारा मधुबन की यात्रा है और मधुबन में की हुई सेवा है, सारे घाव एक तरफ, ज्ञान योग के ऐसा सुनामी आता है। इसलिए खबरदार। और लास्ट सातवां, परमात्म हृदय को जीतना है। किसको जीतना है? परमात्म हृदय, तख्त नशीन हो जाना है हृदय सिंहासन पर, तो उसकी जो भी श्रीमत है, उसकी जो भी आज्ञा है, उसकी जो भी मुरलिया है, उनका अध्ययन, उनका स्टडी, उनका मनन, उनको डिस्कशन, तब कहीं जाके हम विजयी बन पाएंगे। तो ऐसी ये सात प्रकार की विजय है। पहला विकार, उसमें भी काम। दूसरा इंद्रियों पर विजय, उसका अभ्यास करना है, देखो क्या होता है, मर नहीं जाओगे, शक्ति आएगी। ज्यादा खाने से आदमी मरता है या कम खाने से? अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने एक जगह लिखा है, हम कभी उसके लिए पश्चाताप नहीं करते कि कल रात में जो हो गया मैंने कम खाना क्यों खाया। कम खाने के लिए हम पश्चाताप कभी नहीं करते। हम किसके लिए पश्चाताप करते हैं? ज्यादा क्यों खा लिया, सब गड़बड़ हो गई ना। कम खाने के लिए किसी ने पश्चाताप किया? कल रात का कम क्यों खाया, ज्यादा खाना था। जितना व्यक्ति खाता है आधा पेट अपना भरता है और आधा डॉक्टर का, बड़ा ही रहम दिल है। डॉक्टर का पेट भूखा नहीं रहना चाहिए, हम बीमार पड़े और फिर उसके पास जाए, अपने दांतों से अपनी कब्र को खोदता है। तो दूसरी विजय है इंद्रियों पर विजय, तीसरी विजय व्यर्थ और निगेटिव के वायुमंडल में हमें पॉजिटिव को पकड़ के रखना है, चौथी विजय प्रकृति के तत्वों पर विजय, पांचवी विजय दिलों को, आत्माओं के दिलों को जीतना है, उन्हें संतुष्ट करना है, छठवीं विजय संस्कार, पुराने संस्कार, एडिक्शंस, पुरानी आदतें, उनको जीतना है। अभी नई आदतों का निर्माण करो, चिंतन की आदत डालो, एकांत में चिंतन की आदत डालो, चर्चा की आदत डालो, बोलने की आदत डालो, डिस्कशन की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, नोट्स निकालने की आदत डालो, मुरली रिवाइज करने की आदत डालो, आपस में कुमारों का छोटा सा संगठन हो, दो लोग जो रात में सोने से पहले कुछ ज्ञान की चर्चा करें फिर ही सोए, आपस में अमृत वेले का संगठन हो, अगर कोई अमृत वेला नहीं उठ पाता दूसरा कोई उसे कॉल करे 3:30 बजे, मदद लो एक दूसरे की, उसको बोलो कि भाई मुझे सब कुछ कर लिया पर होता नहीं, तुम कॉल कर देना बस, और जब तक ना उठाऊ तब तक कॉल करते रहना। एक कुमार हमेशा सो जाता था, अलार्म रजाई से हाथ निकलता था और अलार्म बंद, स्नूज, उसने सोचा अब कुछ और करना चाहिए, वो अलार्म को उसने बाजू वाली जो खटिया थी खाली उसके नीचे डाके डाल दिया, ताकि ताकि मैं उठूंगा फिर नीचे घुसूंगा, तब तक तो आंख जागरण आ जाएगा ना। तो दूसरे दिन जोर से अलार्म बजा, उसने देखा कहाँ है, तो पता चला वो नीचे है, उठा फिर नीचे घुसा फिर उसको बंद किया और वहीं सो गया। वो भी मेथड फेल हो गई। एक दूसरे की मदद लेना, अमृत वेला किसी को बोलो मुझे उठाए, मुझे कॉल कर दो एक तो मैं उठ जाऊंगा, और 10 मिनट बाद एक बार फिर कॉल कर देना उठा कि नहीं उठा। मदद लेना है एक दूसरे की। और रात में थोड़ी सी चर्चा ज्ञान की, अगर दो लोग हैं तो चर्चा करें, यदि ऐसा नहीं हो सकता तो हर संडे 3-4 कुमार मिले और संडे की जो मुरली है उसको रिवाइज करें, या हफ्ते भर में एक दूसरे से पूछना क्या बताया बाबा ने, क्या बोध थी, कौन सी नई पॉइंट थी। चर्चा होनी चाहिए आपस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट विजय सातवीं, परमात्म हृदय तख्त पर विजय, उस तख्त पर बैठना है तो उसके प्रिय कौन है, आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है, कल की मुरली थी, कौन उसको प्रिय है, तो ऐसा अति शीघ्र हमें ये कार्य करना है। अच्छा, ओम शांति।